डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान 13 मैथ्यू 14 से 16 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 13 मैथ्यू 14 से 16 है। मैथ्यू अध्याय 14 में मैथ्यू यीशु के पानी पर चलने के बारे में भी बताता है, एक वृत्तांत जो मार्क के सुसमाचार में भी है। यीशु ने शिष्यों को झील के दूसरी ओर जाने को कहा। अब दृश्यता के संदर्भ में यह सुबह होने से कुछ ही समय पहले हुआ होगा। यीशु पूर्व से आ रहे होंगे, लेकिन शायद उन्हें देखना कठिन रहा होगा, और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने पहले उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन यहाँ जिस भाषा का प्रयोग यीशु के पानी पर चलने के बारे में किया गया है, विशेषकर मरकुस 6:48 में जहाँ से वह गुजरने वाला था, अय्यूब 9:08 में यह यहोवा के समुद्र पर चलने की बात करता है, अय्यूब 9:11 में कुछ छंदों के बाद यह यहोवा के पास से गुजरने की बात करता है, यह भाषा निर्गमन 33:19 में भी पाई जाती है। तो यह समुद्र पर चलते हुए मार्क का सुसमाचार पहले से ही इस दृश्य में यीशु को दिव्य के रूप में चित्रित कर रहा था, और मैथ्यू उस चित्रण को जारी रखता है। मैथ्यू 14:27, मार्क 6:50 भी यीशु कहते हैं मैं हूँ। इसका अक्सर अनुवाद किया जाता है यह मैं हूँ। यह वही ग्रीक शब्द है मुझ में अहंकार, यह मैं हूँ। इसका मतलब मैं भी हो सकता है, जो निश्चित रूप से पुराने नियम में एक दिव्य नाम था। और समुद्र पर चलने वाले के इस संदर्भ में यह हमें बताता है कि वास्तव में यीशु दिव्य हैं। खैर, जहां तक शिष्यों के यह सोचने की बात है कि वह एक भूत है, तो उन्हें वास्तव में बेहतर पता होना चाहिए था। मेरा मतलब है, पहले से ही यहूदी लोग तकनीकी रूप से कथित तौर पर समझते थे कि धर्मी अच्छे तरीके से प्रभु के साथ थे और दुष्ट पीड़ा की जगह पर हो सकते हैं, और वे भविष्य के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। अधिकांश लोग भविष्य के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे, कम से कम धर्मी लोगों के, और कई लोग शापितों के पुनरुत्थान में भी विश्वास करते थे। आखिरकार दानियेल 12:02 ने दोनों के बारे में बात की। तो एक चीज जो मैथ्यू के पास है और जो मार्क के पास नहीं है, वह है पीटर का पानी पर चलना। पीटर ने यीशु को पीटर को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया। पीटर एक अभिव्यक्ति विश्वास का कार्य करना चाहता है। हम अपने आप चमत्कार नहीं कर सकते, और पीटर ने इसे पहचान लिया। यह केवल प्रभु के आदेश पर ही हो सकता है, इसलिए उसने प्रभु से उसे ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए कहा। परंतु फिर उसने हवा देखी और डर गया और डूबने लगा, और जब वह डूब रहा था तो उसने उचित ही चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा ले। परंतु यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों। अब यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा विश्वास कहाँ है। क्या हम हवा की ओर देखते हैं? क्या हम लहरों की ओर देखते हैं? पीटर के विपरीत मुझे यकीन नहीं है कि मैं वास्तव में बहुत बार नाव से बाहर निकला हूं। तो यह इस तरह से मेरे विश्वास को चुनौती देता है। यह मुझे प्रभु पर अधिक भरोसा करने की चुनौती देता है। और जब प्रभु हमें मिशन के संदर्भ में कुछ करने के लिए बुलाते हैं, तो वह हमें वह करने में सक्षम बनाते हैं। मैंने इंडोनेशिया के एक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया, जिसने मुझे बताया कि मिशन के संदर्भ में उसने और उसकी मंत्रालय टीम के बाकी सदस्यों ने एक बहुत ही तेज नदी को पार किया। उस वक्त पानी बहुत ज्यादा था। उन्होंने सोचा कि यह ऊंचा है, लेकिन उन्हें लगा कि प्रभु ने उन्हें इसे पार करने के लिए प्रेरित किया। वे अंदर चले गए। पानी उनके घुटनों से ऊपर नहीं आया, तो वे पार चले गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने पैरों के तलवे महसूस हो रहे हैं। उन्हें लगा कि वे नदी के तल पर चल रहे हैं। वे दूसरी ओर पहुंचे और जिन ग्रामीणों को वे उपदेश देने आए थे उनसे पता चला कि वे अभी अभी पानी की सतह के पार चले थे। मैं पसंद करूंगा कि अगर यह मेरे साथ कभी घटित हो तो यह इस तरह से घटित हो ताकि मैं हवा और लहरों को देखकर यह न कहूं, अरे नहीं, मुझे इसके बाद तक इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी भी मामले में मैंने किसी और का साक्षात्कार लिया जिसने मुझसे कहा कि उसे पार करने की जरूरत है। लेकिन टीम के अन्य सदस्य सभी पुरुष थे और वे हाथ में हाथ डाल सकते थे। और जब वे इस जलाशय को पार कर रहे थे तो यह उनकी छाती तक आ रहा था। और वह क्योंकि स्थानीय रीति रिवाज यह था कि यदि वह हथियार बांध लेती तो प्रभु के नाम पर बदनामी होती, इसलिए उसे अकेले ही पार जाना था। उसने बस प्रार्थना की कि पानी शांत हो जाए। यह शांत हो गया और वह चली गई और उसने सोचा कि यह उसके टखनों तक आ रहा है। उसने सोचा कि वह नीचे छू रही है, पानी उतर गया है। परंतु जब वह पार हो गई तो उन्होंने उसे समझाया, नहीं, तुम पानी पर चल रही थी। हम बता सकते हैं, हम इसे देख सकते थे, पानी नीचे नहीं गया, तुम तो बस चल दिए। तो ऐसा हुआ है। लेकिन यीशु ही वह है जो इसे स्वाभाविक रूप से करता है। ऐसे में उसे थोड़ी भी अतिरिक्त अलौकिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 15, परंपरा पर धर्म ग्रंथ की विजय। परंपराएं कभी कभी अच्छे विचारों, अच्छे शास्त्रीय विचारों को संरक्षित कर सकती हैं। लेकिन कभी कभी परंपराएं लोगों ने जो सोचा है उसका संचय मात्र होती हैं। और लोगों ने जो सोचा है वह हमेशा वही नहीं होता जो भगवान ने प्रकट किया है। ऐसे में हाथ धोने का मुद्दा था। यह मूल रूप से एक प्रवासी यहूदी रिवाज रहा होगा, लेकिन अब यह एक व्यापक यहूदी रिवाज था। फरीसियों ने ऐसा किया। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि खाने से पहले उनके हाथ धोए जाएं। यह स्वच्छता के उद्देश्य से अच्छा है, लेकिन वे इसे अनुष्ठान के उद्देश्य से कर रहे थे और उनके पास अन्य प्रकार की अनुष्ठानिक धुलाई भी होगी जो उनकी अनुष्ठानिक दिनचर्या का हिस्सा थी। वे हाथ धोने सहित परंपरा को लेकर बेहद सतर्क थे। और हम यह जानते हैं कि रब्बी स्रोतों से जो फरीसियों पर निर्भर हैं, इसलिए उन्होंने यीशु की आलोचना की। आपके शिष्यों ने खाने से पहले हाथ क्यों नहीं धोए? यीशु ने जवाबी चुनौती जारी की। आप परंपरा को बनाए रखने के लिए पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों की उपेक्षा क्यों करते हैं? अरे, यह तो पवित्र शास्त्र में भी निर्दिष्ट नहीं है। लेकिन कई बार आप धर्मशास्त्र के ऊपर अपनी परंपरा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र आपके पिता और आपकी मां का सम्मान करने पर जोर देता है। खैर, याद रखें, वे इससे सहमत होंगे। यहां तक कि अन्य जाति भी इससे सहमत थे। जोसेफस और कुछ रब्बियों ने कहा कि यह सबसे बड़ी आज्ञा थी। एक रब्बी का एक उदाहरण है जो अपनी मां का इतना सम्मान करना चाहता था कि जब वह बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी और यह एक बिस्तर था जो जमीन से ऊंचा था, तो वह जमीन पर लेट जाता था और उसकी पीठ पर अपना कदम रखता था, उसके लिए बिस्तर पर पैर रखने की चौकी बनना। फिर भी ऐसे लोग थे जो अभयारण्य के लिए धन समर्पित करके धार्मिक खामियों का फायदा उठा रहे थे, जिसका उपयोग उनके वृद्ध माता पिता की सहायता के लिए किया जाना चाहिए था। वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करने में असफल होना, सभी ने माना कि यह बुरा था। अब इस देश में हमारे पास वृद्ध लोगों के लिए विभिन्न सुरक्षा जाल हैं, कम से कम इस समय जिस देश में मैं रहता हूं, और कुछ देशों में ऐसा है। लेकिन परंपरागत रूप से यह आवश्यक था कि बच्चे अपने वृद्ध माता पिता का समर्थन करें। और आज आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ चीजों के बारे में बहुत धार्मिक हैं। वे कहेंगे, ठीक है, मुझे अपना दशमांश देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, भले ही इसका मतलब यह हो कि किसी जरूरतमंद को भोजन नहीं मिला हो। खैर, बाइबल के अनुसार दशमांश का उद्देश्य क्या था? मेरा मतलब है, बाइबल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? यह निश्चित रूप से उस तरह का प्रबंधन है जिस पर यीशु जोर देते हैं, लेकिन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब यह समझ में आता है कि इसे कुछ केंद्रीय पर्यवेक्षकों से वितरित किया जा सकता है, जैसा कि अधिनियमों की पुस्तक में है, यह समझ में आता है। तो आप जानते हैं, चर्च के माध्यम से काम करना ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ ऐसे लोग थे जो जिसे वे धार्मिक भक्ति मानते थे उसका सम्मान कर रहे थे और अपने आसपास की वास्तविक जरूरतों का ख्याल नहीं रख रहे थे, जो वास्तव में बहुत ईश्वरीय होना नहीं है। यीशु कहते हैं कि तुम अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करते हो, पद 6। फरीसियों ने बड़ों की परंपराओं को आगे बढ़ाया। यीशु ने कहा, सदूकियों ने उनका खंडन किया, लेकिन उन्होंने धर्मग्रंथ और ईश्वर की शक्ति की भी उपेक्षा की। छंद 8 और 9 में यीशु इस बारे में बात करने के लिए धर्मग्रंथ को उद्धृत करते हैं कि कैसे उन्होंने परंपरा को धर्मग्रंथ से ऊपर माना है। यशाया अध्याय 29 पद 13। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनकी शिक्षा मनुष्य की आज्ञा है। आज कभी कभी हम अपनी चर्च परंपराओं को धर्मग्रंथ में पढ़ते हैं या हम अपनी संस्कृति के पक्ष में धर्मग्रंथ की उपेक्षा करते हैं। आपके पास कुछ चर्च हैं जो व्यवहार में अपनी परंपरा को धर्मग्रंथ से ऊपर रखेंगे। यह सिर्फ वे लोग नहीं हैं जिनके पास वास्तव में इसके बारे में विश्वास है, बल्कि चर्च भी हैं जो कहते हैं, नहीं, हम केवल धर्मग्रंथों को मानते हैं, लेकिन वे अक्सर अपनी परंपराओं के प्रकाश में धर्मग्रंथों की व्याख्या करते हैं, भले ही धर्मग्रंथ ऐसा न कहते हों। आज हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो संस्कृति जो भी कहती है उसके साथ चलते हैं। यदि संस्कृति कहती है कि कुछ प्रकार की यौन गतिविधियां स्वीकार्य हैं, तो चर्च उसके साथ चलता है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संस्कृति जो कुछ भी कहती है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। यदि संस्कृति कहती है कि कुछ ठीक है, तो हम संस्कृति जो कहती है उसका विरोध करेंगे। साथ ही हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो हमारे अनुभव को धर्मग्रंथ से ऊपर मानते हैं। कई चर्च इसके विपरीत हैं। वे उन चीजों का अनुभव नहीं करते जिनके बारे में शास्त्र बात करता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसे चर्च होते हैं जो अनुभव को ऊंचा उठाएंगे, चाहे हमारा अपना अनुभव हो या किसी उपदेशक का अनुभव जिसके बारे में हम सुनते हैं, वह उसे धर्मग्रंथ से ऊपर उठाएगा और धर्मग्रंथ के प्रकाश में अपने अनुभव की व्याख्या करने के बजाय और अपने अनुभव में शास्त्र को जीने के बजाय, जो हमें करने की आवश्यकता है, हम अपने अनुभव के प्रकाश में धर्मग्रंथ को पढ़ते हैं और इसे अपने अनुभव के अनुरूप बनाते हैं। इसलिए ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम आज धर्मग्रंथ के अधिकार को कमजोर करते हैं। और फिर भी यीशु हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें राष्ट्रों को शिष्य बनाना है। अच्छा, हम यह कैसे करें? हमें लोगों को धर्म ग्रंथ की ओर वापस बुलाना होगा। 15:12 उसने जो कहा उससे फरीसी नाराज हुए। उनकी अपनी परंपराएं थीं और यीशु ने जो कहा वह उन्हें पसंद नहीं आया। और यहां नाराज के लिए शब्द सिर्फ अपराध नहीं है, यह स्कैंडलिजो है। इससे उन्हें ठोकर खानी पड़ती है। वे बहुत परेशान हैं। यह अपराध का चरम रूप है। और शिष्यों ने उसे चेतावनी दी, फरीसी इससे नाराज थे। ताकतवर को नाराज करना अच्छा नहीं है, जिन्हें आपको बाद में सहयोगी के रूप में आवश्यकता हो उन्हें नाराज करना अच्छा नहीं है। यीशु की प्रतिक्रिया है, जो मेरे पिता द्वारा नहीं लगाए गए हैं उन्हें उखाड़ दिया जाएगा। पद 13। यह बाइबल की भाषा है। उदाहरण के लिए आपके पास यिर्मयाह 31:28 में है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या कर रहा था। ईश्वर लगा सकता है या उखाड़ सकता है, वह बना सकता था या वह गिरा सकता था, और वह फरीसियों से अंधे मार्गदर्शकों की नाई बातें करता है। अंधे लोगों के पास अक्सर मानवीय मार्गदर्शक होते थे। कभी कभी कम से कम कुछ संस्कृतियों में यदि लोग अंधे हैं तो उनके पास मार्गदर्शक कुत्ते होते हैं जो उन्हें नेविगेट करने में मदद करते हैं। लेकिन उस समय अंधे लोगों के पास अक्सर एक मानव मार्गदर्शक होता था जो यह सुनिश्चित करता था कि वे सही रास्ते पर जाएं। शिकारियों को पकड़ने के लिए कई खुले गड्ढे थे। कभी कभी वे भंडारण के लिए होते थे, लेकिन विशेष रूप से खुले गड्ढे शिकारियों को पकड़ने के लिए होते थे। खैर, यीशु कहते हैं ये अंधों के अंधे मार्गदर्शक हैं और वे दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। 15:11 में यीशु ने आगे कहा, यह वह नहीं है जो मुंह में जाता है। एक अन्य रब्बी ने भी ऐसा ही बयान दिया, लेकिन केवल निजी तौर पर, इस डर से कि कहीं कुछ लोग बाहरी आज्ञा का पालन करना बंद न कर दें। यीशु विवरण से अधिक तोरा के सिद्धांतों को महत्व देते हैं। अब मार्क और भी आगे बढ़ता है। जब यीशु कहते हैं यह वह नहीं है जो मुंह में जाता है, यह वह है जो मुंह में जाता है, यह वह है जो बाहर आता है, जो हृदय से आता है, वह अपवित्र करता है, जो व्यक्ति को अपवित्र करता है। मार्क आगे बढ़ते हैं और एक टिप्पणी जोड़ते हैं और कहते हैं, यह कहकर यीशु ने सभी खाद्य पदार्थों को शुद्ध घोषित कर दिया। लेकिन मार्क स्पष्ट है कि यह उनकी टिप्पणी है, बिल्कुल वही नहीं जो यीशु ने कहा था। खैर, मैथ्यू विशेष रूप से यहूदी ईसाइयों के लिए लिख रहा है। उनमें से अधिकांश संभवतः कोशेर रखते हैं। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। यह बिल्कुल उनके खाने का तरीका है। इसलिए मैथ्यू को वह विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धांत कायम है। तोरा के सिद्धांत ही मायने रखते हैं। विवरण तोरा के कुछ विवरण केवल एरेट्स इज़राइल में ही रखे जा सकते थे। उन्हें केवल भूमि में ही रखा जा सकता था। तोरा के कुछ विवरण केवल कृषि प्रधान समाज में ही रखे जा सकते थे, जिस शाब्दिक तरीके से वे लिखे गए थे। उनमें से कुछ को केवल एक निश्चित अवधि में ही रखा जा सकता था, जिस शाब्दिक तरीके से वे लिखे गए थे। लेकिन सिद्धांत पारसांस्कृतिक हैं। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 22 में सिद्धांत आपको अपनी छत के चारों ओर एक पैरापेट या बाड़ बनाने की आवश्यकता है। मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने अपनी छत के चारों ओर बाड़ बनाई है? और आमतौर पर वे कहते हैं, ठीक है, नहीं, हमारी छत के चारों ओर कोई बाड़ नहीं है। जिस बिंदु पर मैं आमतौर पर कहता हूं, आप सभी बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जा रहा हूं। नहीं, लेकिन जब मैं वापस आता हूं तो वे हंसते हैं। लेकिन निस्संदेह इसका सिद्धांत यह है कि लोग अक्सर छत पर पड़ोसियों का मनोरंजन करते हैं। आप जानते हैं, उनकी छत सपाट थी और उन्होंने छत पर बहुत सारे काम किए। और यह कहता है कि अपनी छत के चारों ओर बाड़ा बनाओ, ऐसा न हो कि तुम खून का दोषी ठहरो। आप नहीं चाहेंगे कि कोई गिर जाए। अगर कोई गिर जाए तो कुछ बच्चे खेलने लगें। यह दायित्व का मुद्दा है। आपकी संपत्ति सुरक्षित होनी चाहिए ताकि किसी को चोट न पहुंचे। आपको अपने पड़ोसी की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अब इसे अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ संस्कृतियों में जहां लोग यात्रा करते समय सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं, हालांकि इससे यातायात संबंधी मौतों में लगभग 50% की कमी आती है। और इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा करना अच्छा होगा। लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि उनकी कुछ कारों में सीट बेल्ट तक नहीं होती। लेकिन किसी भी मामले में हम अपने पड़ोसी की सुरक्षा का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल बाइबल आधारित हैं। यीशु टोरा के सिद्धांतों को महत्व देते हैं और फिर वह वाइस लिस्ट देता है। वह इन बुरी बातों के बारे में बात करता है जो दिल से आती हैं। वह एक सामान्य साहित्यिक और अलंकारिक रूप था। आप इसे पुराने नियम में पाते हैं, आप इसे ग्रीक साहित्य में पाते हैं। फिलो के पास 100 से अधिक बुराइयों की एक सूची है, इसलिए वे कभी कभी बहुत लंबे हो सकते हैं। लेकिन यहां उन्होंने जिन बुराइयों को सूचीबद्ध किया है उनमें से अधिकांश 10 आज्ञाओं में मानवीय शब्द आज्ञाओं का उल्लंघन है। यीशु कहते हैं, असली पाप वह है जो हृदय से आता है। अब यीशु पवित्रता और अशुद्धता के बारे में बात कर रहे हैं और जो होने वाला है उसके कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति से निपटना होगा जिसे उसके लोग धार्मिक रूप से अशुद्ध मानेंगे। अध्याय 15 श्लोक 21 से 28 में यीशु कनानी महिला के विश्वास को संबोधित करते हैं। क्या साफ है का मुद्दा 15 से 20 में उठा। खैर, अब यीशु एक कनानी महिला को संबोधित करते हैं। मार्क में वह ग्रीक में सिरोफोनीशियन है, मैथ्यू में वह कनानी है, सुसमाचार की शुरुआत में वंशावली में तामार और राहब की तरह, और यीशु उसकी तुलना कुत्ते से करते हैं। अब कहीं आप यह न सोचें कि कुत्ता उस संस्कृति में एक अच्छा पूरक था, क्योंकि यह एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकता है। कुत्ता वास्तव में काफी गंभीर अपमान था। यहां तक कि यूनानी, जिनके पास कभी कभी पालतू जानवर के रूप में कुत्ते होते थे, कुत्तों को गंभीर अपमान के रूप में इस्तेमाल करते थे। वह वास्तव में उसे कुत्ता नहीं कहता है, इसलिए वह वास्तव में उसका अपमान नहीं कर रहा है। अरे, कुत्ता ऐसा नहीं करता, लेकिन वह उसकी तुलना कुत्ते से करता है। वह उसके विश्वास में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा से पार पाने के लिए उसे खुद को विनम्र बनाना होगा और अंत में उसे अपने विश्वास के लिए सराहना मिलती है। और उसकी संस्कृति में कई अन्य जातियों के बीच वे कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे और कुत्ते आकर मेज के नीचे से टुकड़े खा जाते, इसलिए वह उसकी तुलना कुत्ते से करता है। वह कहता है, पहले बच्चों को खाना खिला लेने दो। और उसके बाद वह कहती है, ठीक है, मैं इसराइल के बच्चों में से नहीं हूं, तुम दाऊद के पुत्र हो, मुझे प्रथम स्थान नहीं मिला, लेकिन मुझे आपसे कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, मैं जानता हूं कि तुम में बहुत शक्ति है, मुझे बस इसका थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, मुझे बस एक टुकड़ा चाहिए। और इस विश्वास को व्यक्त करने में वह यीशु द्वारा बनाई गई बाधा को पार कर जाती है। आप जानते हैं, कभी कभी हम बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। मेरा मतलब है, कभी कभी नहीं भी नहीं होती है, लेकिन अक्सर बाइबल में आप देखेंगे कि यीशु बाधा डालते हैं क्योंकि वह हमारे विश्वास को चुनौती देना चाहते हैं। वह चाहता है कि हम दिखाएं कि यदि यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है तो हम दृढ़ हैं। और इसलिए याद रखें, यीशु की मां के मामले में उनके पास शराब नहीं है। औरत, मुझे तुमसे क्या लेना देना, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। अच्छा, वह क्या करती है? वह जाती है और परिचारकों से कहती है, वह जो कुछ कहता है क्या तुम वह करते हो? ये वही शब्द हैं जो फिरौन ने यूसुफ के बारे में इस्तेमाल किए थे अपने सेवकों को यूसुफ की आज्ञा मानने का निर्देश देते हुए। खैर, वह उत्तर के रूप में नहीं लेने से इनकार कर देती है। उसे वह मिल गया है जिसे हम पवित्र चुटपाह कह सकते हैं, और वह इसे पाने का इरादा रखती है। उन मित्रों के साथ भी ऐसा ही है जिन्हें लकवे के रोगी को यीशु के पास ले जाना है। ऐसा ही निंदनीय आस्था वाली उस महिला के साथ भी है जो आगे बढ़ती है और उसके परिधान के आंचल को छूती है। और यहाँ भी ऐसा ही है जब महिला उसके पीछे चिल्लाती रहती है, जहाँ अंधे बार्टिमायस भीड़ मार्क अध्याय 10 में चुप हो जाओ कहते हैं, और वह और भी अधिक चिल्लाता है। वे जानते हैं कि यीशु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जरूरतें पूरी कर सकता है, और वे हताश हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि वे उस तक पहुंचते रहें। इस तरह के विश्वास को किसी न किसी रूप में पुरस्कृत किया जाएगा क्योंकि हम उस तक पहुंच रहे हैं। हम उस पर निर्भर हैं। ठीक है, उसके विश्वास के लिए उसकी सराहना की गई है, ठीक उसी तरह जैसे सेंचुरियन की उसके विश्वास के लिए सराहना की गई थी, भले ही वह अध्याय 8 में एक अन्य जाति है। और वे दोनों इस कथा का हिस्सा बन जाते हैं जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि भगवान हर किसी से प्यार करता है। वह सभी लोगों से प्यार करता है। वह सभी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। पहले 5,000 की फीडिंग होती थी, अब 4,000 लोगों को खाना खिलाना है। उसने बच्चों की रोटी एक कनानी को दे दी थी, परंतु बच्चों की बहुत रोटियां बच गईं, यहां तक कि बच्चों के लिए शाब्दिक रोटी भी। यीशु द्वारा 4,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद 7 टोकरियां बची थीं। अब मैथ्यू का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के अलावा 4,000 लोग थे। और आज कुछ लोग कहते हैं, मैथ्यू, तुमने पूरी गिनती क्यों नहीं दी? आपने महिलाओं और बच्चों को शामिल क्यों नहीं किया? क्या आपको महिलाएं और बच्चे पसंद नहीं हैं? यह एक सांस्कृतिक चीज थी। यह मैथ्यू की गलती नहीं थी। इसी तरह से गिनती की गई। निस्संदेह जिसने भी मूल रूप से गिनती की वह मैथ्यू हो सकता था, लेकिन जिसने भी मूल रूप से गिनती की उसने मनुष्यों की गिनती की। ऐसा ही किया गया, और मैथ्यू के पास यही आंकड़ा उपलब्ध था। अध्याय 16 में फरीसी यीशु से फिर से एक संकेत मांगते हैं। वे स्वर्ग से एक चिन्ह चाहते थे। अब शायद उनका मतलब एक स्वर्गीय चिन्ह है, जैसे स्वर्ग में एक चिन्ह, मैथ्यू अध्याय 2 में तारे जैसा कुछ। या शायद उनका मतलब सिर्फ ईश्वर से था, क्योंकि स्वर्ग से भी ईश्वर की ओर से कहने का एक अच्छा यहूदी तरीका था। और यहाँ पाठ्य भिन्नता है। कुछ पांडुलिपियों में यह है, कुछ पांडुलिपियों में नहीं, जहाँ लोग आकाश के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और यीशु कहते हैं, आप आकाश के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन आप समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप जानते हैं, यदि आप फिलिस्तीन, यहूदिया और गलील में रहते तो बारिश उस तरह की बारिश होती जो पश्चिम से आती, लेकिन गर्म हवा दक्षिण के रेगिस्तान वगैरह से आएगी। इसलिए वे अपनी जलवायु और उनकी स्थलाकृति के बारे में कुछ बातें जानते थे। लेकिन किसी भी मामले में यीशु कहते हैं कि यह एक दुष्ट पीढ़ी है जो संकेत की मांग करती है। वह संकेत दे रहा था, लेकिन वे संकेत मांग रहे थे। वे उन संकेतों को स्वीकार नहीं कर रहे थे जो पहले ही दिए जा चुके थे। यहूदी आशा ने अंत से पहले एक बुरी पीढ़ी के बारे में बात की। खैर, यह निश्चित रूप से उनमें से एक था, और इसलिए यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं, फरीसियों के खमीर से सावधान रहें। 16:6 ऋषिमुनि कभी कभी पहेलियों में बातें करते थे। यीशु कभी कभी लाक्षणिक रूप से बोलते थे, कभी कभी वह अक्षरशः बोलता था। शिष्य अब इतने भ्रमित हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह शाब्दिक रूप से बोल रहे हैं या अलंकारिक रूप से। वे आपस में बातचीत करने लगते हैं। यीशु कह रहे हैं कि इस खमीर से सावधान रहो। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता है कि हम रोटी नहीं लाए। 16:07 और इसलिए यीशु 16:09 या 11 में उन चीजों के बारे में एक बिंदु बताता है जो वह पहले ही कर चुका है। मेरा मतलब है भोजन का बहुगुणन। 5 रोटियां 5,000 लोगों को खिलाई गईं। कितनी टोकरियां बची? 12 बड़ी टोकरियां। 7 रोटियां 4,000 लोगों को खिलाई गईं। 7 छोटी टोकरियां बची थीं। तुम्हें समझ नहीं आया? मैं शाब्दिक रोटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं रोटी प्रदान कर सकता हूं। मैं रोटी बढ़ा सकता हूं। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह फरीसियों के खमीर या मार्क में हेरोदेस में फरीसियों के खमीर से सावधान रहना है। मैथ्यू फरीसियों और सदूकियों पर जोर देना पसंद करता है। उसके समय में हेरोडियन वास्तव में उसके लिए कोई मुद्दा नहीं थे, और जीवनी लेखक अक्सर ऐसा करते थे। खैर, यीशु ने व्यवस्था की है कि पीटर उसे कैसरिया फिलिप्पी में कबूल करेगा। यहीं पर यीशु सवाल उठाते हैं, लोग कहते हैं कि मैं कौन हूं? और वे यिर्मयाह और मैथ्यू सहित विभिन्न प्रकार के भविष्यवक्ताओं के साथ उत्तर देते हैं। और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? अच्छा, इस जगह पर क्यों? यह एक बुतपरस्त शहर था जो जादू टोना और बुतपरस्त पूजा के लिए जाना जाता था, विशेषकर पैन देवता की, हालांकि अन्य देवताओं की भी। खैर, मैथ्यू 16:13-20। मैं पहले मार्क की कहानी की तुलना करने के लिए यहां से विषयांतर करने जा रहा हूं, क्योंकि मार्क बहुत सी चीजों को एक साथ अधिक संक्षिप्त तरीके से खींचता है। लेकिन मार्क में जब पत्रस कहता है तुम मसीह हो, तुम मसीहा हो, यीशु कहते हैं किसी को मत बताना। क्यों? खैर, हम पहले ही मसीहाई रहस्य के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें से कुछ भीड़ नियंत्रण हो सकता है। लोकप्रियता भी बहुत जल्दी सलीब पर ले जाएगी। लेकिन कुछ अपवाद भी थे। मार्क में एक भौगोलिक अपवाद पर ध्यान दें। यीशु ने अन्य जातियों के क्षेत्र में एक भूतपूर्व दुष्टात्मा से कहा कि वह सबको बताए कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। क्यों? खैर, अन्य जाति गलत समझेंगे। उन्होंने पहले से ही यीशु को एक जादूगर के रूप में गलत समझा था, लेकिन वे मसीहा की अवधारणा को गलत नहीं समझेंगे। इसलिए उन्हें चेतावनी देने की आवश्यकता थी कि यह कोई जादूगर नहीं था। लेकिन उसने यहूदी क्षेत्र में ऐसा नहीं किया। और फिर वहां एक कालानुक्रमिक, एक अस्थाई अंतर है। मार्क अध्याय 9:9। इस परिवर्तन के बारे में किसी को तब तक न बताएं जब तक कि मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जीवित न हो जाए। यह लौकिक अंतर क्यों? क्योंकि क्रूस के प्रकाश के अलावा वे वास्तव में उसकी पहचान को नहीं समझ सके, और वे पुनरुत्थान के प्रकाश के अलावा क्रूस को नहीं समझ सके। गोपनीयता के विभिन्न स्तर थे। मार्क अध्याय 4:12। यीशु के विरोधी अंधे थे। खैर, अध्याय 8:11-15। यीशु के शिष्यों में फरीसियों की तरह ही अविश्वास था। तो जब वे कहते हैं ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कोई रोटी नहीं लाए, यीशु उन्हें लगभग 5 अलग-अलग तरीकों से बुलाते हैं। क्या तुम अब भी अंधे हो? क्या तुम्हें अब भी नहीं दिखता? क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? अध्याय 8:17-18 पर निशान लगाएं। वे फरीसियों की तरह अंधे नहीं थे। वे अध्याय 4:12 में यीशु के विरोधियों की तरह अंधे नहीं थे, लेकिन फिर भी वे आधे अंधे थे। उन्हें अभी भी दूसरे स्पर्श की जरूरत थी, और इसलिए मार्क में यीशु दूसरे स्पर्श के साथ उनके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 8:22-25 में यीशु द्वारा उन्हें फटकारने के तुरंत बाद एक अंधा आदमी 2 स्पर्शों से ठीक हो गया। यीशु ने पहली बार उसे छुआ और उसने कहा, तो क्या देखता है? और अंधा आदमी कहता है, ठीक है, मैं लोगों को देखता हूँ, लेकिन वे घूमते हुए पेड़ों की तरह दिखते हैं। और फिर यीशु ने उसे दूसरी बार छुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। संभवतः शिष्यों से संवाद करने के एक तरीके के रूप में आपको अभी भी मनुष्य के पुत्र के मृतकों में से जीवित होने के बाद दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है। खैर, मार्क अध्याय 8 में यीशु उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। पत्रस कहता है, तुम मसीह हो। यीशु कहते हैं, चुप रहो, किसी को मत बताना। लोग अभी इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। और फिर अगले पद में वह समझाता है कि उसके लिए मसीह होने का क्या अर्थ है। उसे कष्ट होगा। खैर, यह उस समय मसीहा बनने की सामान्य अपेक्षा के विपरीत था। यह दूसरी शताब्दी की बाद की परंपरा थी जो अलग है, लेकिन यीशु के समय में अभी तक नहीं। यीशु के दिनों में यह सुलेमान के भजन 17 की तरह है। लोग एक विजयी योद्धा मसीहा की उम्मीद कर रहे थे। तो पीटर आपत्ति करता है, हे भगवान, मैंने अभी कहा कि आप मसीहा हैं, तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तो यीशु जवाब देते हैं, पत्रस कहता है, तू मसीह है। यीशु कहते हैं कि तुम शैतान हो, आप ईश्वर की अपेक्षा मानवीय वस्तुओं को महत्व देते हैं। 8:33, आप कष्ट नहीं उठाना चाहते और इसीलिए आप किसी पीड़ित मसीहा का अनुसरण नहीं करना चाहते। तो यीशु कहते हैं, जब तक मैं न उठूं, किसी को मत बताना। मार्क का 9:9। यीशु की गुप्त पहचान तभी प्रकट होगी जब वह मृतकों में से जीवित हो उठेगा, क्योंकि केवल तभी उनके शिष्य वास्तव में उनके मिशन को समझ सकते थे। यह अच्छा लगता है जब लोग मानते हैं कि यीशु एक महान शिक्षक या पैगंबर और यहाँ तक कि मसीहा भी हैं। विश्वास करने लायक ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन अपने आप में उनमें से कोई भी, यहाँ तक कि यह विश्वास करना भी पर्याप्त नहीं है कि वह मसीहा है। हमें यह भी मानना होगा कि वह हमारे लिए मरे। यह उसका शिष्य बनने और बचाए जाने के अर्थ का एक हिस्सा है। और इसलिए यीशु कहते हैं, मैं पीड़ित होने जा रहा हूँ। पीटर कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। यीशु मरकुस 8:33 में इस कष्टविरोधी धर्मशास्त्र को शैतानी कहते हैं, क्योंकि यीशु 8:34-8:35 में कहते हैं, मेरे अनुयायियों को भी कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई मेरा अनुसरण करेगा उसे क्रूस तक मेरे पीछे चलने के लिए तैयार रहना होगा। हमारा भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। मरकुस अध्याय 2:3 में यीशु को बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शिष्य इस बात से बेखबर रहते हैं। यीशु ने मार्क अध्याय 6 में शिष्यों को चंगा करने के लिए भेजा, लेकिन उसे बहुत ही कम कवरेज मिलता है। यीशु कवर करता है, ठीक है, मार्क उनके उपचार को कवर करता है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन वह इसे बहुत संक्षेप में बताता है। उस अनुभाग का अधिकांश भाग जॉन द बैप्टिस्ट की फांसी के बारे में बात करते हुए व्यतीत होता है। यीशु के अग्रदूत शहीद हो गए। मार्क अध्याय 10 में शिष्य बार्टिमायस और बच्चों को यीशु से दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय यीशु खुद को एक उदाहरण के रूप में देते हुए कहते हैं, मैं सेवा करने और मरने के लिए आया हूँ। अध्याय 13 में यीशु अपने अनुयायियों के लिए बड़े क्लेश की चेतावनी देते हैं और फिर अध्याय 14 और 15 में क्रूस पर चढ़ जाते हैं। हमारा भाग्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमें सीधे सुसमाचार का प्रचार करने की आवश्यकता है। यीशु के सच्चे अनुयायी उसके क्रूस को साझा करते हैं। उसने हमारे लिए परमेश्वर का न्याय सहा। हम उसके साथ दुनिया की नफरत सहते हैं। खैर, मैथ्यू के पास भी यही विषय हैं, लेकिन उसके पास कुछ अन्य भी हैं। मैं उन विषयों से एक साथ निपटना चाहता था, लेकिन मैथ्यू के पास कुछ अतिरिक्त सामग्री भी है, और इसलिए अब हम मैथ्यू के पास मौजूद इस अतिरिक्त सामग्री को देखने जा रहे हैं। पत्रस कहता है कि तुम मसीहा हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र। 1616 आप मसीहा हैं। यीशु ने पत्रस से कहा, पद 18, तुम चट्टान हो। लेकिन पीटर चट्टान, चट्टानी, चट्टान से ठोकर की ओर जाता है। श्लोक 23 के अनुसार वह एक अच्छी चट्टान से एक बुरी चट्टान बन जाता है। यह बात मेरे ध्यान में एक बहुत ही कुशल कैथोलिक विद्वान जॉन पी मेयर ने मैथ्यू पर अपने काम में लाई थी। पीटर चट्टान है। इसका क्या मतलब है? कुछ व्याख्याकारों ने पेट्रास, पीटर और पेट्रा, रॉक की तुलना करते हुए कहा है कि ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन ग्रीक के इस काल से, कोइन ग्रीक से, उनका वास्तव में एक ही मतलब था। वे अब भिन्न नहीं थे, जैसे वे पुराने ग्रीक में थे। इसके अलावा अरामी में उनके पीछे एक शब्द है, केफास या केफा, जिसे ग्रीक में केफास के रूप में लिप्यंतरित किया गया था। नए नियम में पीटर के लिए उसका नाम है। भाव संभवतः इस प्रकार है, जैसा कि इफिसियों 2:20 में आपके पास है। मेरा मतलब है, लोग इसके विरोध में जो उद्धरण देते हैं वह 1 कुरिन्थियों 3:16 है, मसीह ही एकमात्र आधार है। ठीक है, हाँ, एक अर्थ में वह एकमात्र नींव है, लेकिन इफिसियों 2:20 के अर्थ में चर्च प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाया गया है। मसीह उस छवि में मुख्य आधारशिला है। तो वह अंतिम आधार है, लेकिन उसके बारे में उद्घोषणा भी चर्च के लिए एक आधार है। यीशु के मसीह के रूप में उद्घोषक के रूप में पीटर की भूमिका इस अर्थ में है कि वह चट्टान है, वह नींव है, क्योंकि वह है जो कबूल कर रहा है कि यीशु ही मसीह है, और चर्च का निर्माण विश्वासपात्र के रूप में उसकी भूमिका पर हुआ है। चर्च यीशु की पहचान की स्वीकारोक्ति पर बनाया गया है। सुधार के समय यह विवादित हो गया। लोगों ने कहा, नहीं, वह स्वयं चट्टान नहीं है। हालांकि चर्च ने ऐतिहासिक रूप से इसे पोप या पोप पद पर भी लागू नहीं किया था, उसने इसे पीटर पर लागू किया। लेकिन किसी भी मामले में मुझे लगता है कि यह वास्तव में इस संदर्भ में पीटर को संदर्भित करता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में पीटर के रूप में पीटर को नहीं, बल्कि यह पीटर की तरह ही मसीह की घोषणा करने वाले के रूप में उसकी भूमिका को संदर्भित करता है। ठीक वैसे ही जैसे इफिसियों ने प्रेरितों और पैगंबरों की नींव पर निर्माण किया। चर्च के निर्माण की इस भाषा के साथ कुछ विद्वानों ने कहा है, ठीक है, अब देर हो चुकी है, इसे बाद में बनाया गया। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। वह चर्च के बारे में कैसे बात कर सकता है? लेकिन एकलेसिया, हमारे पास जो शब्द है उसका अनुवाद चर्च है। ग्रीक शब्द सार्वजनिक सभाओं को संदर्भित करता है। एकलेसिया का मतलब यह नहीं है, कुछ लोगों ने कहा है कि इसका मतलब बुलाया गया है। एक का मतलब बाहर और क्लेसिया शब्द से जिसका अर्थ बुलाया गया है। लेकिन शब्दों का मतलब सिर्फ शब्दों के टुकड़ों को एक साथ रखना नहीं था। शब्दों का अर्थ केवल वही नहीं है जो उनकी व्युत्पत्ति का अर्थ है। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान कहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अच्छा कहने की? अंग्रेजी शब्द नाइस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है अज्ञानी। तुमने मेरा अपमान किया है। किसी भी मामले में गंभीरता से नहीं, बल्कि केवल इस बात को स्पष्ट करना कि यह शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं है, बल्कि उनका उपयोग है। इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक्लेसिया का उपयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता था। पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद में क्यूहोल सभा, जंगल में भगवान का समुदाय, भगवान के लोग और वाचा समुदाय का अनुवाद कुछ अलग ग्रीक शब्दों द्वारा किया गया था। एक था सिनेगॉग, जिससे हमें सिनेगॉग शब्द मिलता है। दूसरा एक्लेसिया चर्च था, और यह परमेश्वर के समुदाय के लिए उपयोग किया जाने वाला एक स्वाभाविक शब्द था। खैर, यीशु ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते थे। मृत सागर स्क्रॉल अवशेष समुदाय के लिए इस तरह के शब्द का उपयोग करते हैं, और यीशु भी योजना बना सकता था। आखिरकार उन्होंने 12 को चुना। खैर, इस बारे में बहुत अधिक विवाद नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो बहुत बहुत संशय में हैं, क्योंकि आप जानते हैं, फिर से हमारे पास मृत सागर स्क्रॉल में 12 का उपयोग है। यह यहूदी समुदाय में नवीकरण आंदोलन के एक नेता के लिए समझ में आया, लेकिन साथ ही हमने 12 इन 1 कुरिन्थियों 15 के बारे में बहुत प्रारंभिक परंपरा में पढ़ा है, जिससे लगभग हर कोई सहमत है कि यह बहुत पहले से चला आ रहा है, और उस शब्द का प्रयोग तब भी किया जाता है जब एक शिष्य दूर चला गया। यहूदा दूर गिर गया, और यह कहने के कई अन्य कारण भी हैं कि यह एक आधारभूत परंपरा है। यह एक बहुत ही प्रारंभिक परंपरा है, जिससे हर कोई, मुझे कहना चाहिए अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि यह सटीक है। सामान्यतः शिक्षकों के शिष्य होते थे। शिष्य उपदेश जारी रखेंगे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यीशु ने अनुयायियों के एक समुदाय से उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की अपेक्षा की। 12 इसराइल की बहाली के लिए एक अवशेष था, तो इसराइल की बहाली के लिए भाषा में इस आने वाले समुदाय के बारे में बोलते हुए मैथ्यू और ल्यूक के बीच साझा सामग्री में वह अपने 12 शिष्यों के बारे में बात करता है जो 12 सिंहासनों पर बैठे हैं, इसराइल की 12 जनजातियों का न्याय कर रहे हैं। और फिर यहूदा के पतन के साथ अधिकांश विद्वान कहेंगे, ठीक है, यह बहुत प्रारंभिक परंपरा होनी चाहिए, इसे यीशु के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि बाद में उन्होंने यहूदा के स्थान पर एक विकल्प चुना, लेकिन यह इसे और अधिक जटिल बना देता है। बाद में उन्होंने यह कहावत नहीं गढ़ी होती। इसी तरह मेरे चर्च के निर्माण की भाषा में भगवान ने अक्सर पुराने नियम में अपने लोगों का निर्माण किया। वह उन्हें बनाया गिरा सकता था। यिर्मयाह 24:6, यिर्मयाह 31:28 इत्यादि। यीशु कहते हैं कि अधोलोक के द्वार चर्च पर प्रबल नहीं होंगे। कभी कभी पाताल के द्वार, यह ग्रीक शब्द है, कभी कभी पाताल के द्वार शियोल के द्वार के बारे में पुराने नियम की हिब्रू अभिव्यक्ति का अनुवाद करते हैं। शियोल मृतकों के राज्य के लिए हिब्रू अभिव्यक्ति थी। दोनों अभिव्यक्तियां मृत्यु के क्षेत्र को संदर्भित करती हैं। पाताल लोक के द्वार यूनानियों के बीच इस्तेमाल की जाने वाली एक अभिव्यक्ति थी, या वे अक्सर पाताल लोक के बारे में बात करते थे जहां मृत लोग थे। वे उसे पाताल लोक और पाताल लोक के राज्य के रूप में बात करते थे इत्यादि। यहां संदर्भ यीशु ने अभी बात की है, या यीशु मरने, अपना क्रूस उठाने और उसके पीछे चलने के बारे में बात करने वाले हैं। और मुद्दा यह है कि शहादत चर्च को नहीं रोकेगी, चाहे वे हमें मार भी दें, यह चर्च को नहीं रोकेगी। यीशु किसी भी कीमत के लायक है। दरअसल टर्टुलियन ने दूसरी शताब्दी के अंत में लिखा था कि शहीदों का खून चर्च का बीज है। यीशु राज्य की कुंजियों की बात करते हैं। तुम्हें पाताल लोक के द्वार मिल गए हैं, परंतु तुम्हें राज्य की कुंजियां भी मिल गई हैं। उस समय कुंजियां बहुत बड़ी हुआ करती थीं। अब मेरी जेब में कुछ छोटी चाबियां हैं, लेकिन उस समय चाबियां बहुत बड़ी थीं। और ये चाबियां केवल एक ही व्यक्ति के पास होंगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो इन चाबियों को ले जाता था, एक राज्य की चाबियां। यशायाह 22 ऐसे अधिकारी के बारे में बात करता है जिसके पास दाऊद के घर की चाबियां होंगी। इसलिए राज्य की चाबियां होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि पतरस ने यीशु के मसीहापन की प्रकृति को गलत समझा, यीशु कहते हैं, शैतान मेरे पीछे हट जाओ। और यह शैतान द्वारा यीशु को क्रूस के बिना राज्य की पेशकश करने के बाद अध्याय 4 और पद 10 में उसने जो कहा था उसकी याद दिलाता है। खैर, अब पीटर यीशु का अपना स्टार शिष्य वही काम कर रहा है। यीशु सचमुच धैर्यवान है। उसे सचमुच बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन वह इसे वैसे ही बताता भी है जैसे यह है। वह कहता है, हे पतरस, शैतान तेरे द्वारा बोल रहा है। और यह 27 श्लोक 40 और 43 के लिए तैयारी करता है जब वे कह रहे हैं, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्रूस से नीचे आओ, भगवान तुम्हें बचाए। दूसरे शब्दों में शैतान यीशु को क्रूस से हटाने की कोशिश कर रहा था, यीशु को उसके मिशन से हटाने की कोशिश कर रहा था। यह एक शैतानी विचार है, क्रूस के बिना राज्य। श्लोक 24 से 27 में हम शिष्यत्व की कीमत के बारे में अधिक सीखते हैं, जहां यीशु कहते हैं, मेरे पीछे आओ। श्लोक 23 में ठीक है, वहां शिष्यों को अनुसरण करने की यही स्थिति थी। और यीशु का अनुसरण करने का क्या अर्थ है? यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, यीशु कहते हैं, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। यदि आप अपने जीवन या अपनी आत्मा को बचाते हैं, यदि आप वास्तव में इसे हमेशा के लिए बचाना चाहते हैं, तो आपको इसे इस जीवन में त्यागने के लिए तैयार रहना होगा, वह श्लोक 25 और 26 में कहते हैं। और कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने प्राचीन काल में इसे पहचाना था। इसे दो बारूक नामक यहूदी दस्तावेज में मान्यता प्राप्त है, और दार्शनिकों ने भी अक्सर इसे पहचाना। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, जो कुछ समय तक रहता है उसकी तुलना में जो हमेशा के लिए रहता है वह बहुत अधिक मायने रखता है। मुझे याद है कि यह उन चीजों में से एक थी जिसे एक ईसाई के रूप में मैंने तुरंत समझ लिया था। मैंने अपना सारा समय प्लेटो को पढ़ने में बिताया, जो न्यू टेस्टामेंट के लिए सबसे उपयोगी चीज नहीं थी। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे प्लेटो से मिली वह यह थी कि जो चीजें हमेशा के लिए रहती हैं, वे उन चीजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं जो नहीं रहती हैं। किसी भी चीज की तुलना अनंत काल से नहीं की जा सकती। यदि हम इस जीवन के हर पल को अनंत काल की रोशनी में जिएं, तो हम अपना जीवन बुद्धिमानी से जिएंगे। हम अपने जीवन को ऐसे तरीकों से गिनेंगे जो हमेशा के लिए मायने रखेंगे। और मुझे याद है, एक बार मैं एक युवक से बात कर रहा था। वह आस्तिक नहीं था, लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त थे। वह वास्तव में अपने दोस्तों से प्यार करता था, परंतु उसने अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया था। वह अपने जीवन में कुछ चीजें कर रहा था, और मैंने उससे इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह अभी अभी अपने कैलकुलस टेस्ट में फेल हो गया था, लेकिन यह बुनियादी गणित था। मैंने कहा, आप जानते हैं, किसका मूल्य अधिक है, एक वर्ष या अनंत काल? जाहिर है, अनंत काल। आप वास्तव में अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। सबसे अच्छा उपहार जो आप उन्हें दे सकते हैं वह है उन्हें अनंत जीवन की ओर ले जाना। आप उन्हें कुछ ऐसा नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बता सकता था कि पवित्र आत्मा उसके साथ काम कर रहा था। उसने उसी समय मसीह को स्वीकार नहीं किया। मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। वह अभी तक तैयार नहीं था, लेकिन वह समय आया जब वह तैयार था और वह मसीह के प्रति इतना समर्पित हो गया। और उसने मुझसे कहीं अधिक लोगों को अकेले ही मसीह की ओर अग्रसर किया है। वह बस लोगों से प्यार करने, उन तक पहुंचने और उनके साथ मसीह को साझा करने के इस उपहार के साथ आगे बढ़ता गया, क्योंकि अनंत काल ही सबसे अधिक मायने रखता है। लेकिन निस्संदेह इसका मतलब यह नहीं है कि हम वर्तमान जीवन की उपेक्षा करें। इसका मतलब है कि हम वर्तमान जीवन को महत्व देते हैं। हम लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों की सेवा करते हैं। हम भूखों को खाना खिलाते हैं। हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग किसी न किसी तरह हमेशा जीवित रहेंगे और हम उनकी सही तरीकों से मदद करना चाहते हैं। परिवर्तन की दृष्टि से हमारा जीवन व्यर्थ है। वे अब हमारे नहीं रहे। मैं बहुत आभारी हूं। मुझे अब जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं 20 साल की उम्र पार कर पाऊंगा। आप जानते हैं, एक युवा ईसाई के रूप में मेरे विश्वास के लिए मुझे सड़कों पर पीटा जा रहा था। मैंने सोचा, तुम्हें पता है, मैं अब किसी भी दिन मारा जाऊंगा। प्रभु ने मुझे रखा है। परंतु प्रभु दयालु है। हमारा जीवन जब्त है। हमें उसके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पद 27 में मनुष्य का पुत्र उन लोगों को प्रतिफल देने आएगा जो उसके पीछे चलेंगे। और यीशु पद 28 में भविष्यवाणी करते हैं कि जो लोग उसके साथ थे वे मनुष्य के पुत्र को आते देखेंगे। खैर, यह कुछ ऐसा है जो अगले पैराग्राफ में होता है। मैथ्यू अध्याय 17 में उन्हें रूपांतरण में उसकी आने वाली महिमा का पूर्वाभास मिलता है। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 13 मैथ्यू 14 से 16 है।